राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान जमुना तीरा बन चारि जमुना जमुना तीरा बन चारि जमुन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदान जमुना तीरा बन चारि जमुना जमुना तीरा बन चारि जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी. हम इसे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Jai Jagannatha, Jai Jagannatha. बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे राधा जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीता गौर हरि नीता गौर हरि बोल Hari bol, Hari bol, Nita Gaur Hari. Jai Om Vishnu Pad Paramhamsa Parivraj Kacharya Srutar Satahi Divine Guest Lavai Charanarvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Shkan Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnu Pad Paramhamsa Parivraj Kacharya Srutar Satahi Divine Guest भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री श्री नवदीप मायापुर धाम की श्रीमती तुलसी देवी भक्ति देवी की गंगा जमुना माई की गौर प्रेमानंदे हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गिरधारी जी की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की श्रील प्रभुपाद की आल ग्लोरी श्री शंबुल्य भोटिश आल ग्लोरी श्री शंबुल्य भोटिश All glory, the symbol of devotees. All glory, all good Guru and Garanki. Just, इसका sound तेज कर दीजिए. थोड़ा सा ऊंचा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादन् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महाबदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध का अध्याय भी सात है और इसमें श्लोक संख्या 27 पढ़ेंगे। 27 बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग मेरे से आवृत्ति कीजिएगा।
एतत् द्वारा हे संसार गुण कर्म
निबन्धनः अज्ञानमूलः अपार्थः अपि पुंसः स्वप्न इव आर्यते एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्नैवार्यते एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्नैवार्यते एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवार्यते एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धनः अज्ञानमूलो पार्थोऽपि पुंसः स्वप्नैवार्यते
इव आर्यते
यह द्वारा जिसका द्वार हे निस्संदेह संसार भौतिक जगत जिसमें मनुष्य तीन प्रकार के कष्ट पाता है गुण कर्म निबंधन प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बंदी बनाना अज्ञान मूल जिसकी जड़ अज्ञान है अपार्थ निरर्थक अपि यद्यपि पुंस जीव का स्वप्न स्वप्न इव सदृश अर्प्यते रखा जाता है अर्प्यते शब्द है क का भी उच्चारण है अर्पण से बना अनुवाद और तात्पर्य से प्रभुपाद जी का दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों को सहना पड़ता है और इस प्रकार वह भवबंधन में पड़ जाता है इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित तथा स्वर मानना चाहिए जिस प्रकार स्वप्न स्वप्नावस्था में मनुष्य को कष्ट भोगना पड़ता है तत्पर नश्वर जीवन की अवांछित दशा को ही अज्ञान कहते हैं मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि भौतिक देह नश्वर है क्योंकि यह एक निश्चित तिथि पर सृजित होती है और जन्म मृत्यु वृद्धि पालन रूपांतरण तथा क्षय इन छह अवस्थाओं को पार करके निश्चित तिथि पर इसका अंत हो जाता है शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके ज्ञान के कारण है और नश्वर होने के कारण अवांछित है अज्ञान के ही कारण मनुष्य को एक शरीर के बाद दूसरे में रखा जाता है किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है वह अपने अज्ञान के कारण या कृष्ण को विस्मृत करने के कारण ही ऐसा करता है अतएव इस जीवन में जिसमें बुद्धि विकसित रहती है मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भावना को बदले तभी वह मुक्त हो सकेगा इसकी पुष्टि भगवद गीता 4:9 में हुई है जहाँ भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन हे अर्जुन जो मेरे कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है जब तक मनुष्य कृष्ण को समझता नहीं और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह भवबंधन में पड़ा रहता है इस बद्ध जीवन को समाप्त करने के लिए उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए निस्संदेह भगवान यही चाहते हैं सर्व धर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज जैसा कि महाराज ऋषभ देव ने उपदेश दिया है न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशदयास देह मनुष्य को इतना समझदार तो होना ही चाहिए कि वह यह समझे कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है और बहुत काल तक नहीं रहेगा किंतु जब तक यह शरीर है तब तक कष्ट भोगना होगा अतएव यदि वह अच्छी संगति से किसी प्रमाणिक गुरु के उपदेशों से कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर ले तो उसके बद्ध जीवन का अंत हो सकता है और उसकी मूल भावना जो कि कृष्ण भावनामृत कहलाती है पुनः जागृत हो सकती है। जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वह जीवन चाहे जागृत में हो या स्वप्नावस्था में हो स्वप्नोत ही रहता है और उसका वास्तविक महत्व नहीं रहता। यह अनुभूति भगवान की कृपा से संभव है। यह कृपा भगवद गीता के उपदेश के रूप में उपलब्ध है। अतः हरेक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि वह मानव समाज के हर एक व्यक्ति को जागृत करने के लिए कल्याण कार्य में लग जाए जिससे वह भी कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर सके और बद्ध जीवन से मुक्ति लाभ कर सके। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। दुख रूपोपि संसारो बुद्धि पूर्वम अवाप्यते यथा स्वप्ने शिरक्षेदम स्वयं कृत्वात्मनोवशः ततो दुखमाप्येत तथा जागरितोपितु जानन्नपत्मनो दुखम अवशस्तु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है। उसे शुद्ध बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती है तो वह यह समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटे जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। भगवान की कृपा के बिना वह अज्ञान में पड़ा रहता है और नाना प्रकार के कष्टों को भोगता है। एतत् द्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसः स्वप्न इवार्प्यते। हम इस श्लोक में जो बात कही गई है उस पर आएंगे। उसके पूर्व चूंकि यह सातवां स्कंध है श्रीमद् भागवतम का, और आप लोग यह बात सुने होंगे बार बार, श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु का वर्णन है। अत सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः। 10 विषयों को डील किया गया है। विशेषकर सातवें स्कंध में एक 10 विषयों में होता है ऊति, संस्कृत में उसे ऊति कहते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण उतयः, ऊति उतयः प्लुरल में है। ऊति का अर्थ होता है कर्म वासना, वासना अभी कहिए वासना, जो प्रत्येक जीव में इस प्राकृत जगत में जो है तो उसे कुछ करने की एक प्रवृत्ति है। कोई किसी भी जीव में देखिए, मनुष्य में, पशु में, पक्षी में, एक चींटी को देखिए हमेशा निरंतर कहीं ना कहीं लगता है कुछ उसका कुछ काम है, घूमती रहती है। कहीं दाना डाल दीजिए शक्कर का मिलता है तो उसे ले जाकर कहीं बिल में रखती है। तो जिस भी आप एकदम निर्विवाद है किसी भी प्राणी को देख लीजिए, भले ही थोड़े देर के लिए डर लगता है कि सो गया है, आराम भी करते हैं लेकिन कुछ न कुछ करते रहते। तो इसको वासना कहा गया, संस्कृत में भागवत में से ऊति कहा गया। कर्म करने की जो इच्छा है, प्रवृत्ति है, श्रीमद् भागवतम के चूंकि इसमें ऊति पूरे सातवें स्कंध में ऊति का वर्णन किया गया है, श्रीधर स्वामी जब इसकी टीका प्रारंभ करते हैं तो एकदम उपक्रम में लिखते हैं कि वासना कर्म वासना दो प्रकार की होती है। जो भी कर रहे हैं आप लोग कार्य कर रहे हैं तो डिवाइड कर दिया गया है एक दृष्टिकोण से दो। तो एक को शुभ वासना कहते हैं, वासना समझते हैं ना, कर्म करने की प्रवृत्ति को वासना कहते हैं। तो वासना को हमेशा खराब सेंस में नहीं लेना चाहिए। वासना मतलब हमारी प्रवृत्ति है कुछ करने की, कोई पूजा करने की प्रवृत्ति है, चाहे और भी कुछ, यह भी एक वासना ही है। तो दो तरह की वासना होती, एक को कहते हैं शुभ वासना और एक को अशुभ वासना। तो भगवान की जो सेवा है, भक्ति है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, इसके लिए जो कर्म किया जाता है उसको शुभ वासना कहते हैं। और भागवतम के स्टैंडर्ड के अनुसार इसके अतिरिक्त भगवान को प्राप्त न करने के, भगवान को प्रसन्न नहीं करना, भगवान की भक्ति नहीं करना, इसके अतिरिक्त जो कुछ कर्म किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, दान किया जाता है, उसको अशुभ वासना कहा गया। भगवान की भक्ति और भक्ति के व्यतिरिक्त जो भी कर्म है तो उसे अशुभ वासना कहा। श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे टिपिकल उदाहरण है दो व्यक्ति का, एक है प्रहलाद महाराज और दूसरे किसका ज्यादा इसमें वर्णना है, प्रहलाद महाराज के अतिरिक्त सातवां स्कंद में हिरण्यकशिपु। तो प्रहलाद महाराज को प्रस्तुतिकरण इसमें कहकर शुभ वासना के आदर्श, अनेक एग्जाम्पल किसी को लेना है कि शुभ वासना किसमें थी, देखना आप चाहते हैं तो प्रहलाद महाराज में देख लीजिए। निरंतर भगवान की सेवा करना है, भगवान का भजन करना है, भगवान का ध्यान, उसमें विकट से विकट परिस्थितियों में क्या एक ही लक्ष्य है भगवान को, तो शुभ वासना किसी व्यक्ति में है तो प्रहलाद महाराज उसके टिपिकल उदाहरण है, मापदंड है। कितनी भारी परिस्थितियां उनके साथ थी, कितना उनको कष्ट दिया जा रहा था, और जन्म से असुर परिवार में जन्म, तो वहां पर भजन कर लेना, वहां पर कृष्ण भावना को अर्जित करना तो बहुत कठिन काम था, लेकिन वहां पर उन्होंने अर्जित किया। तो यह है शुभ उत्ति का वर्णन, शुभ उत्ति शुभ वासना का आदर्श, और अशुभ वासना का आदर्श मैंने वो अभी एकदम चरमोत्कर्ष सीमा पर है, वह हिरण्यकशिपु। एक कहीं पूरा वह क्या कहते हैं हम लोग के प्रोजेक्ट है, एक कहीं लक्ष्य है अपना नहीं पूरे परिवार का, कि इंद्रिय तर्पण खूब मैक्सिमम एक्सटेंड तक करना, ज्यादा से ज्यादा हम भोग को भोग लें और इसके अतिरिक्त भोग को प्रमोट करें, समझते हैं ना। एक भोग भोगना तो मैक्सिमम एक्सटेंट कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पूरा पूरा जब तक जीवन है इसको बढ़िया से भोग लिया जाए अपने, और उसी को खूब प्रचार भी कर, तो उसमें यह है। इसलिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की व्याख्या है, कुल लोग कहते हैं कशिपु का अर्थ होता है तकिया है, और हिरण्य का अर्थ होता है सोना, मैंने बेड, मैंने एकदम बढ़िया से बढ़िया बेड, मैंने सोने का बेड हो, भोग का प्रतीक हिरण्यकशिपु। तो यह इसमें सातवें स्कंध में उति का कर्म वासना का वर्णन किया गया, और यह तो दो उदाहरण हुए। श्रीधर स्वामी टीका के प्रारंभ में एक बात कहते हैं कि क्या कारण है कि एक जीव में शुभ वासना है और एक में अशुभ वासना है, कैसे किसी के लक्ष्य प्रहलाद महाराज में शुभ वासना देखा गया और उनके पिताजी में अशुभ वासना, तो इसका कारण क्या है, क्यों किसी में भक्ति करने की इच्छा होती है और किसी में भक्ति नहीं करने की, क्या कारण है। एक तो कारण है कि भगवान ऐसा पक्षपात करते होंगे, भाई चलो आपको भक्त बना दिए उनको वो बना दिए, यही ना, आप तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं तो किसी को शुभ वासना दे दिए, किसी को अशुभ वासना दे दिए, वह देते हैं कि नहीं देते हैं, तो वह भगवान पक्षपात नहीं कर सकते, भगवान तो सभी प्राणियों के प्रिय है, वो क्यों ऐसा कर, तो जीव में उत्पन्न क्यों ऐसा होता है। तो श्रीधर स्वामी वहां बताए हैं कि किसी में शुभ वासना का उदय होता है भगवान के किसी भक्त को खुश कर देने से, और अशुभ वासना कैसे उत्पन्न हो जाता है यहीं पर रहता है। अशुभ वासना कैसे उत्पन्न हो जाता है, किसी भक्त का दिल दुखा दिए, उसका अपराध कर दिए, तो भक्त की प्रसन्नता यदि हासिल कर ले, आपको ऐसा अवसर मिल जाए कि भक्त का प्रसन्न के लिए कर लिए, तो भक्तों की प्रसन्नता उसकी प्रीति कारण होती है कि हम यदि प्रसन्न कर ले तो हमें शुभ वासना का उदय हमारे हृदय में होगा। और यदि हमने किसी भक्त का अपमान कर दिया, तिरस्कार कर दिया, अपराध कर दिया, तो हमारे न चाहते हुए भी, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में रहेंगे, वहां पर आपके हृदय में अशुभ वासना का उदय होना ही होना ही है। कहीं भी आप रहेंगे, चाहे आप मंदिर में रहते हैं, चाहे घर पर रहते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, पुजारक पूजा का काम करते हैं, जो कुछ करते हैं, यदि आपने किसी भक्त का तिरस्कार कर दिया, उसका अपराध बन गया, तो यह इसको अब क्या कहते हैं, इनइविटेबल, उसको टाला नहीं जा सकता, होने वाला है, आपसे आप में वो वासना का उदय हो जाएगा। इसका भी टिपिकल उदाहरण देख लीजिए, प्रहलाद महाराज का परिवार एकदम असुर परिवार था ना, तो वहां पर विकट से विकट परिस्थिति में उन्होंने भगवान की भक्ति अर्जित कर ली। वह क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रसन्न कर लिया था, उनकी प्रसन्नता थी एक भक्त की, नारद जी की। गर्भ में जब नारद प्रहलाद महाराज थे तो उन्होंने एसोसिएशन किया था नारद जी का, और नारद जी की प्रसन्नता थी उस प्रहलाद महाराज पर, तो उस कारण से चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, असुर परिवार है, कोई वहां अप्रिशिएट नहीं करने वाला था कि आप जप करो, अनुमोदन कोई नहीं करता था, सब लोग विपरीत में थे, कोई बताने वाला नहीं था कुछ, लेकिन वहां पर भी क्योंकि नारद जी का उन पर कृपा था, उनका वो उन्होंने अनुगत्य प्राप्त किया था, उनकी प्रसन्नता थी, इसलिए कर सके। दूसरे उदाहरण अशुभ वासना का, हिरण्यक्षिपु हिरण्याक्ष दोनों भगवान के पार्षद हैं, थे ना, जय और विजय भगवान के एसोसिएट्स, पार्षद, भगवान के धाम में रहने वाले, अब उससे भक्ति के लिए क्या अनुकूल अवसर प्रस्तुत हो सकता है, स्वर्ग में नहीं, बैकुंठ में भगवान के पार्षद थे, और उनमें देखा गया कि अरे बाप, एकदम से अशुभ वासना का भोग किए एक चरम उत्कर्ष पर है, स्वयं सेंस ग्रेटिफिकेशन करना और सेंस ग्रेटिफिकेशन को ही प्रमोट करना, दूसरे लोग भी, हम तो करते हैं, दूसरे लोग भी सब भूल कर यही कर, यह कैसे पार्षद में कैसे हो गया, उनमें वहां तो नहीं हो सकता था ना भाई, कोई मंदिर में रहता है, निरंतर पूजा पाठ करता है, भजन करता है, जप करता है, भक्तों के एसोसिएशन में घिरा हुआ है, तो उसमें क्यों ऐसा अशुभ वासना उत्पन्न हो गया। उन्होंने चतुष्कुमारों का, भक्तों का, उनके जान चाहे अनजान में जैसे उनके द्वारा अपराध हुआ और उनकी प्रीति संपादन वो नहीं कर सके। यदि इसमें ऐसा आप लोगों को दोष बुद्धि नहीं करना चाहिए, न तो हिरण्यक्षिपु पर और न तो चतुष्कुमारों पर, यह भगवान की एक विशिष्ट लीला थी, लेकिन फिर भी समझने के लिए उस परिस्थिति में भी जय और विजय से अपराध हुआ तो उस स्थिति में नहीं रह सके, इस प्राकृत जगत में आना पड़ा, और प्राकृत जगत में आकर कोई भक्ति का माहौल नहीं क्रिएट, एकदम अपोजिट हो गए थे। तो श्रीधर स्वामी जहाँ टीका के एकदम उपक्रम में जब खोलेंगे तो अभी कोई श्लोक लेने से पहले है बात कहते हैं, जीव में शुभ वासना है अशुभ वासना, हम भी वैसी परिस्थिति में हैं, हमारे न चाहते हुए भी हमारे हृदय में अशुभ वासना उत्पन्न हो जाएगी यदि हम किसी का, तो सबसे सतर्क रहने की जो बात है, यदि कोई भगवान का भजन करना चाहता हो, चाहता है कि कृष्ण प्रेम हमको प्राप्त हो, वो परसू करना चाहते, प्राप्त करना चाहते, तो और तो अलर्ट रहना है, भूल कर भी स्वप्न में भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमसे किसी का, वैष्णव का विशेषकर ऐसे तो किसी का अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध नहीं होना, यदि वह हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती, हमको बचा नहीं सकती, अरे जय विजय को नहीं बचा सके तो भगवान के पार्षद, भगवान आग भी गए दरवाजे पर, लेकिन भगवान भी एक बार हार गए, एक बार थोड़े देर के लिए जो कुछ भगवान की लीला थी, लेकिन हम लोग दिखाने के लिए बात की। तो यह समझे उत्ति का वर्णन है, जो 10 अध्याय में तो डायरेक्ट प्रहलाद महाराज का उपाख्यान, और जो 5 अध्याय है श्रीमद भागवतम, इसमें वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया गया। तो अभी कर्म वासना सन्यासी का उस कर्म की भी व्याख्या की गई है, 15 अध्याय कुछ श्रीमद भागवत सातवें स्कंध में है। तो 5 अध्याय में तो ये कथा मोटा मोटी उसी पर केंद्रित रहा है, प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकशिपु की, और 10 तक। और जो 5 अध्याय है उसमें वर्णाश्रम धर्म का है, वो तो कर्म का ही, कैसे कर्म, किसको किस परिस्थिति में कर्म करना चाहिए। तो यह सामान्य रूप से हम बताए थे। और यह जो प्रहलाद महाराज आत्म तत्व का इसमें उपदेश दे रहे हैं, ऐसे क्यों उपदेश देने लगे, तो इसके पूर्व अध्याय आप जानते ही हैं। पूर्व अध्याय में प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को उपदेश दे रहे थे, उन्हें उपदेश पूछा था कि हम लोगों को भी साथ में को देने देते रहते, पूरा उपदेश वर्णन है। उपदेश के क्रम में उन बच्चों ने, हाँ उपदेश के क्रम में वो एक बात नारद जी कह दिए थे, प्रहलाद महाराज कह दिए थे कि यह ज्ञान जो मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, समकक्ष हूँ, भगवान के भक्त की कृपा से आता है। भगवान के भक्त की जब कृपा होती है तो ज्ञान प्राप्त होता है। जब तक साधु संग नहीं किया जाता है, एसोसिएशन नहीं किया जाता है, तो किसी भी कारण से, किसी भी उपाय से, किसी भी जीव में भगवत भक्ति का उद्रेक नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सत्संग की महिमा का थोड़ा वर्णन कर दिया। तो उन बच्चों ने पूछेगा, अरे भाई आप तो हमारे उम्र के ही हैं, हम लोग 5-6 वर्ष के, आप भी 5-6 वर्ष के, आप हमेशा राजमहल में रहते हैं, तो आपको कैसे ज्ञान हो गया? आप कहते हैं बिना साधु संग के वो प्राप्त नहीं होता है, तो आपको तो मिला नहीं, तो आपको इतना बढ़िया कैसे ज्ञान हो गया? तो नारद जी ने अपना अब बता दिया रहस्य, जो आप कथा जानते होंगे कि ऐसे ही नहीं उनको ऐसे हो गया था, यदृक्षा अपने आप नहीं हुआ था। वो बताए कि हम में जो भक्ति है, हम में जो ज्ञान है, या हमको नारद जी की कृपा, तो पूरा उपाख्यान बताए। उपाख्यान बताए तो आप लोग जानते हैं ना कथा, वो सब पिताजी, उन्हें संक्षेप में बताया, हम बताते हैं। पिताजी हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे, और मैं अपनी माँ के गर्भ में था, तो इंद्र ने मेरी माँ का अपहरण किया, यह समझ कर कि एक तो तंग करता है वो असुर, एक दूसरा असुर और बढ़ेगा, तो इसको जेव लड़का उत्पन्न होकर उसको काट दूंगा, मार दूंगा। तो इस आशय से, इस अभिप्राय से इंद्र इनकी माँ का, कयाधु नाम था प्रहलाद महाराज का, अपहरण करे। प्रहलाद महाराज गर्भ में है, तो माँ को लेकर न जा रहे थे इंद्र। उस समय भ्रूण हत्या, ऐसे बाल हत्या भी पाप है, लेकिन गर्भ में किसी जीव को मारना अब इसे जघन्य अपराध है, तो वो नहीं इंद्र करना चाहते थे। चलो जब बच्चा पैदा होगा तो मार, अथवा हो सकता है गर्भ मारने से होता है, माता को कुछ कष्ट होगा, उससे तो कुछ दिक्कत नहीं है, उसको कुछ हानि हो सकता है, तो चलो मारना तो बच्चे को है, तो गर्भ में मारना बहुत पाप है, उसके अतिरिक्त माँ को भी कुछ हर्ज हो सकता है, तो चलो जब प्रसव करेगी तो स्वर्ग में रखूंगा, जिस दिन जन्म लेगा बच्चा, चाहे थोड़ा बड़ा होगा, तो उसे काट दूंगा। तो कथा जानते हैं, हम विस्तार करेंगे, तो यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि 9 बजे तक क्लास खत्म करना है। तो नारद जी ने बता दिया कि ले जा रहे, तब तो नारद जी यदृक्षा कहीं से, नारद जी से मुलाकात हुई रास्ते में, नारद जी ने बताया कि यह क्या कर रहे हो, तो इंद्र अपना अभिप्राय बताया कि मैं करने जा रहा हूँ, तो नारद जी ने कहा कि नहीं 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 इसमें मारने की जरूरत नहीं। तो नारद जी उनके प्रहलाद महाराज की माँ को, कयाधु को आश्रम में रखे, और उन्होंने ज्ञानोपदेश दिया उसको। ज्ञानोपदेश हो रहा था तो प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, तो वो भी सुनते थे, तो उन्होंने ज्ञान धारण कर लिया, गर्भ में थे तभी। तो जब गर्भ में थे भी तो एक भक्त की कृपा को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो उन्हें बताया है, उन बच्चों ने एक बात बताया, आप में भक्ति है, तो उन बच्चों ने एक और भी बात पूछा था। प्रहलाद महाराज, आप कहते हैं आप गर्भ में थे, नारद जी ने उपदेश दिया, आप भक्ति सीख गए, भक्ति कर रहे हैं, बाकी माता जी को कभी नहीं देखते हैं जप वप करते हुए। अरे आप जो गर्भ में थे, आपकी माँ तो वो तो उन्हीं के लिए सुन रही थी ना, तो वह क्यों नहीं भक्त बनी? प्रश्न है ना, गर्भ में यदि लड़का सीख सकता है तो जो बैठी थी मैंने वो संरक्षण, तो वो क्यों नहीं, कभी नहीं देखते हैं कि कभी तिलक करती है ना, तो जप करती है, कुछ नहीं करती थी, कैद कुछ नहीं करती, सच में नहीं करती थी। तो बच्चे देखे थे कि आप गर्भ में थे तो आप ज्ञान सीख लिए, भक्त हो गए, और आपकी माँ तो एकदम फुल फ्लेज विकसित थी, सुन भी रही थी, वह क्यों नहीं भक्ति करती? तो नारद जी ने एक बात बताई है, यद्यपि कि इस समय जैसा संविधान है भारतवर्ष का, चाहे विश्व का संविधान करने का, वह शब्द बात बहुत भारी अपराध है। यदि कोई वह व्यक्ति, मैं कह दूंगा कि यह मेरा मत है, तो मैंने सरकार को पता लगे तो अरेस्ट कर सकती है, लेकिन अब शास्त्र कोट करते हैं तो हम कहेंगे उसमें लिखा गया दूसरी है। तो उसमें नारद जी ने बताया है स्त्रीत्वात्, क्योंकि वह स्त्री थी, क्यों वह नहीं भजन करती है, क्योंकि वह स्त्री है। प्रतिभा पाटिल नाम है ना, इस समय जो हम लोग के राष्ट्रपति का क्या नाम है, स्त्री पुरुषाणाम किंचित भी भेद नास्तिति इति उक्तवती प्रतिभा पाटिल। एक बार से, कोई भी भेद नहीं है स्त्री और पुरुषों में, यदि कोई भेद करता है तो संविधान के अनुसार दंडनीय, स्त्री पुरुष में किसी प्रकार का भेद है, हमारा संविधान है भारतीय संविधान, तो बहुत संविधान की स्त्री पुरुष में भेद करना कि वह तुच्छ है, वह बड़ा है, छोटा है, उसमें कम बुद्धि है, इसमें से अपराध है। प्रहलाद महाराज ने वह कहा था कि वह भोजन क्यों नहीं करते स्त्रीत्वात्, वह स्त्री है इसीलिए वह, और एक दीर्घ कालत्वात भी कहे हैं, बहुत दिन हो गया, अरे बहुत दिन तो आपको भी हो गया, उसका से समाधान है, तो आप भी तो बहुत दिन का, आप आज थोड़ा सुन रहे हैं, आप तो उसी समय सुने थे, स्त्रीत्वात कहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, टेक्स्ट में ही है भागवतम। टीकाकार लोग समाधान करते हैं कि जब भी कि वह माँ थी, प्रहलाद महाराज सुन रही थी, लेकिन अटेंटिव हियरिंग नहीं उसका हो रहा था, क्योंकि वह चिंतित थी, उसका जिसका अपहरण किया गया है, पति से दूर है, तो उसको भय लगा रहा था, इसलिए वो धारण नहीं कर सके। और प्रहलाद महाराज को कोई चिंता नहीं थी, न तो खाने पीने की, न कोई, इसलिए वो सीख सके। तो उन बच्चों ने एक और बात बताया कि सर प्रहलाद महाराज, आप यह कह रहे हैं कि वह स्त्री थी इसलिए नहीं सीख सकी, तो मतलब कि कोई भक्ति को सीखने के लिए कोई योग्य है और कोई अयोग्य है, तब तो ना 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 सभी योग्य हैं। अरे भाई वो जो है तो हम तो बच्चे, हम कैसे सीख सकते हैं, आप ज्ञान हमको देखने, तो हम तो हम लोगों को कैसे सीख में आएगा? तो उन्हें प्रहलाद महाराज नहीं से, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी भक्ति को बढ़िया से पूरा पूरा हृदय सीख सकता है, कोई भी सीख सकता है, इसमें ऐसा नहीं कि स्त्री योग्य नहीं है भक्ति के लिए, ऐसा नहीं पुरुष में ज्यादा योग्यता है, प्रहलाद महाराज ने स्पष्ट कहा। तो भक्ति को सीखने के लिए क्या योग्यता है, तो फिर यही बात आकर कह दिए, साधु संग और श्रद्धा सत्संग, उन्होंने कहा है वह यदि करो, तो उन्होंने यह बात है यदि तुम लोग मेरे बातों में, मैं जो कह रहा हूं, पूर्णतः तुम श्रद्धा करोगे, विश्वास करो, तो आप लोग भी सीख सकते हो, जैसा मैं सीख सका हूं, तो मैं भी तो बच्चा, जब मैं गर्भ में सीख सकता हूं, सीख गया, तो आप लोग तो फिर भी बड़े हो, 5-7 बरस के, 8 बरस के जितने हो, सीख सकते, कोई भी सीख सकता है। तो उन लोगों को आश्वासन दिए, उसके आप पढ़ेंगे तात्पर्य आप लोग पढ़े ही होंगे, रूपा जी बढ़िया से खूब लिखे हैं कि सत्संग में गुरु में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, भक्ति होती है उसके प्रति, तो यह ज्ञान उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। यही श्रद्धा होती है गुरु में। आप श्लोक पढ़े होंगे ना, वह श्लोक हम आपको दिखाई देते हैं, कहाँ है टीका में आया होगा, कहाँ पर है, यश देवी परा भक्ति तथा देवी तथा गुरु तस्य ते कृष्णा प्रकाशन ते महात्मन, किसमें आया, इसमें अध्याय में जरूर आया होगा जहाँ प्रहलाद महाराज पढ़ते हैं। मैं निकलता हूँ, है ना आप लोग, यश देव है श्लोक संख्या 17 में, जहाँ यह बात प्रहलाद महाराज कहते हैं, भवतामपि भूयान में यदि श्रद्धते बचह वैशारदी धी श्रद्धात स्त्री बाला नाम समय यथा, चाहे स्त्री है बच्चा है कोई भी, यदि आप मेरे वचनों में आपको विश्वास होगा, मैं आपका गुरु तुल्य हूँ, मैं उपदेश दे रहा हूँ, और मुझ में यदि आप लोगों की श्रद्धा होगी तो आप लोग भी ठीक ठीक इससे बढ़िया से समझते, चाहे बच्चा हो स्त्री हो, कोई अयोग्य नहीं है, भक्ति के कोई अयोग्य नहीं है, योग्यता कहाँ से आती है कि वह श्रद्धा। तो इसके उप में प्रभुपाद जी श्लोक कोट करते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद का, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य इति कस्य हर्तव्यं प्रकाशयन्ति महात्मनः। यदि किसी व्यक्ति की भगवान में यश देवी पराभक्ति, भगवान में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, और सिमिलर श्रद्धा यदि गुरु में होती है, तो शास्त्र में का क्या रहस्य है, भागवतम क्या कहना चाहते हैं, क्या तात्पर्य है, बाहर आप न भी पढ़ेंगे तो हृदय से प्रकाशित हो जाएगा, उद्भूत हो जाएगा, रिविलेशन इसे कहते हैं अंग्रेजी शब्द, रिविल करना। एक कुछ हम लर्न करते हैं, सीखते हैं, पढ़े पढ़ने से हमको ज्ञान हो जाता है, और कुछ चीज अंदर से ही रिवील हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है, अंदर से ही हो जाएगा। तो केवल भगवान में श्रद्धा है और गुरु में श्रद्धा है, उसके प्रति बढ़िया विश्वास है, तो क्या करना चाहिए, क्या भक्ति है, क्या उसका इंटीग्रेसी है, क्या जटिलता है, वो अपने अंदर से प्रकाशित कहा जाए, रिविलेशन जिस अंग्रेजी में, रिवील हो जाए। एक हम लर्न करते हैं, सीखते हैं कोई चीज़, आप जो किसी विद्यालय में गए और सीखे, उस ज्ञान हो जाता है, और एक रिविलेशन होता है, प्रकाशन होता है, अंदर से वो प्रकाशित हो जाए। तेषा मेवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तमह नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति करता है तो तेषा मेवानुकम पार्थम, उन पर मैं कृपा करने के लिए, तेषा मेवानुकम पार्थम अहम अज्ञान जम तमह नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान हृदय में परमात्मा रूप से हैं, वही ज्ञान का दीपक प्रकाशित कर देते हैं, अज्ञान को नष्ट कर देते। तो उनको आश्वासन दिया कि यदि आप हमें श्रद्धा रखोगे आप लोग, तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ सकते हो, बढ़िया से समझ सकते हैं। और इसके बाद प्रहलाद महाराज अब ये जो श्लोक है, कई एक श्लोकों में आत्म तत्व का उपदेश कहे हैं, उसके बाद यही चालू हो जाता है आत्मा के विषय में। जो यदि कोई आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो पहला क्वालिफिकेशन है, योग्यता है कि आत्मा और देह का जो पार्थक्य है वो उसे समझ ले। चिन्मय वस्तु और जड़ वस्तु, आत्मा और शरीर, स्पिरिट और मैटर, इसका यह एकदम एबीसी नॉलेज है, यह ज्ञान होना चाहिए कि इसमें दोनों में पार्थक्य है, भिन्न वस्तुएं हैं। भले ही इसी शरीर में, भौतिक शरीर में आत्मा निवास करता है, परंतु आत्मा एकदम भिन्न इस शरीर से है। तो पहले तो आत्म तत्व का उपदेश दिए, आत्मा के स्वरूप का वर्णन कर लें, और यह इतना शुद्ध नित्य पवित्र इस बंधन में कैसे पड़ गया, मैंने इतना पवित्र आत्मा शुद्ध स्वयं प्रकाशित उसका एक कितना, लेकिन इस भौतिक शरीर में कैसे आ गया, इसमें कैसे बनकर दुखों को पा रहा है, तो इस श्लोक में एतद् द्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन। संसार में ये प्रकृति के जो तीन गुणों हैं उसमें आसक्ति के कारण भगवान को विस्मृत होकर इसको ऐसे करने के कारण इसमें बंध गया है। अज्ञान मूल, इसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, दुख की वास्तविक सत्ता नहीं है, लेकिन अज्ञान पर आधारित हम वो जीव हमको सुखी था दुखी, स्वस्थ अस्वस्थ हम लोग मान रहे हैं। आत्मा इसमें आसक्ति हो गई है, तो इसको उदाहरण दिया गया है, अपार्थोपि स्वप्न इव अर्पते। स्वप्न हम लोग सबका अनुभव है, आप लोग में से कोई अपवाद नहीं है, हम लोग स्वप्न में बहुत वस्तुएं देखते हैं और उस स्वप्न में वस्तुएं देखते हैं उसकी वास्तविक सत्ता नहीं होती है, फैक्चुअल उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हम बाघ देख रहे हैं तो सच में हमारे कमरे में बाघ घुसा हुआ है, नहीं दिखता है ना, घुसा नहीं है ना, दिखता है भले है। अथवा आप कुछ मिठाई खाते हैं तो सचमुच मीठा लगता है, इसमें क्षीरो सिरक छेद कहा गया है वैदिक ग्रंथ में, बात आपका कोई सिर काट लिया है और आपको दुख होता है कि हमारा सिर कट गया है, समझे ना, आप ऐसे तो काट देने पर वो कट गया है तो आपका दुख नहीं होता है, आपको पता है, लेकिन स्वप्न में आप देखते हैं कि हमारा सिर काट कर और वहां टांग दिया गया, तो डरते डर लगता है, भय लगता है, सांप देखते हैं तो भय लगता है, कभी कभी तो ऐसा ही भय लगता है स्वप्न में आप कोई भय की वस्तु देख रखते हैं, जाग जाते हैं तो एक दो मिनट कांपता रहता है शरीर, हुआ है ना कभी आप लोग, जाग गए फिर भी भय लग रहा है थोड़े देर, लेकिन पता लग जाता है कि अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो जैसे स्वप्न इव अर्पते, अज्ञान के कारण स्वप्न में अनुभूत वस्तुओं का उसमें जो भावना है उसका कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, परंतु अज्ञान से, क्योंकि सपनावस्था में हम लोग हैं, हमारे मन ने ऐसा क्रिएशन कर लिया है तो उसमें सुख दुख का हम लोग भोग करते हैं, वैसे ही इस दुनिया में आकर इस शरीर में भौतिक शरीर में आकर यहाँ के अब क्या हम किस हद तक फंसे हुए हैं इसकी सीमा नहीं है, बहुत तरह के यहाँ चिंता है, उद्वेग है, यह अज्ञान मूल अपि, इसका मूल है अज्ञान, परंतु अब अपार्थ व्यर्थ है, उसका कोई है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी इव अर्प्यते, अर्पित किया गया, हम लोग स्वीकार करते हैं, हम लोग दुख सुख दुख में पड़े हुए हैं। प्रभुपाद जी इसमें आखिर इस द्वंद से हम लोग कैसे छूटेंगे, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवद्गीता का, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मान्यते स्वरूप। भगवान को यदि हम लोग समझ जाएंगे, भगवान के जन्म कर्म की रहस्य को लीला को हम समझ जाएंगे, उसको गान करेंगे, तो हम लोग इस भवबंधन से, इस अज्ञान से दूर हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी पूछे कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन है, एकदम टॉप मोस्ट, यदि आपको कहा जाए कि एक श्लोक बोलिए सबसे जो महत्वपूर्ण श्लोक और एक ही, तो बहुत भक्तों की मान्यता थी कि सर्वधर्मान प्रत्यज मा में कम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापे भक्षाई स्वयं, यह भक्त लोग कहे, और कोई भी आप लोग जो भी नहीं जानते यही कहेगा ना कि भाई भक्त भगवद्गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन है, एक श्लोक आपको बताना होगा, तो प्रभुपाद जी कि ना आश्चर्य हो रहा है, अरे अब इससे भी कोई महत्वपूर्ण है, तो फिर दूसरे बार कोई कहे थे मन मना भो मत भक्तो मत दयाजी मन, तो उस पर प्रभुपाद जी थे कि ना वह भी नहीं, तभी श्लोक वो श्लोक बोल रहे थे तब प्रभुपाद ने यही श्लोक कहे थे, कि गीता का यदि सबसे श्लोक दो बोलना होगा तो इसको बोलना होगा होगा और सर्वधर्मान प्रत्यजमान में कर दे, तीन श्लोक आपको बताया जाएगा तो तीसरा वाला मन मना भव मत होता ऐसे, लेकिन कोई एक श्लोक कहना होगा कि सबसे महत्वपूर्ण। तो प्रभुपाद जब जो चाहे परिहास से मजाक में कर रहे थे जैसे तो इसी को कहे थे, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्ग। तो हम लोग कैसे उससे छूट सकते हैं संसार से, इस श्लोक में यह तात्पर्य में कहा गया है कि हमारे इस दुख का अज्ञान कारण है, इग्नोरेंस कारण है, हमें पता नहीं है, आत्म तत्व को हम नहीं समझते हैं, शरीर के नेचर को नहीं समझते हैं, दोनों में हम लोग दुख भिन्न मानकर मान लेते हैं हम शरीर ही हैं। तो शरीर में तो छह विकार होता रहेगा, किसी का शरीर है होता है ना, जन्म मृत्यु दो बीच में है और चार बीच में है, जन्म रहता है थोड़ा बढ़ता है थोड़ा देर तक रुकता है, कुछ प्रोडक्ट करता है शरीर से, कुछ प्रोडक्शन होता है, फिर थोड़ा सा डुंडलिंग से कहते हैं क्षय होने लगता है और अंत में नाश हो जाता है। तो अब इस शरीर में होता है, लेकिन चूंकि हम इस शरीर को मैं मान लिया हूँ तो इसमें यदि कोई बुढ़ापा आ रहा है, बाल पक रहा है तो चिंता का वचन करें, घबरा जाते हैं, बुढ़ापा आ रहा है तो बुढ़ापा देख कर हम रोने लगते हैं, और मृत्यु का तो भय है ही, अभिनिवेश जिसे कहा जाता है, प्रत्येक हम मृत्यु का भय है, अभिनिवेश शास्त्रीय भाषा में, पता नहीं इस जन्म का तो हमें अनुभव नहीं है लेकिन मृत्यु से बहुत डर लगता है, पता नहीं आप लोग को पता नहीं है क्या होता है, भले इस जन्म में क्या पता है मृत्यु होता है तो क्या होता है, लेकिन उधर एकदम कोई भी प्राणी छोटा से छोटा से प्राणी देखेंगे वो देख लेता है कि उसे हम खतरा में पड़े तो लौट जाते हैं, छोटा चींटी इत्यादि भी अभिनिवेश। तो इस हम लोगों को दुख में पड़े हुए हैं, ये हो रहा है शरीर में, इसे कोई चिंता की बात नहीं, शरीर में हम तो भिन्न है तो हमें क्या लेना देना है, लेकिन चूंकि हम इससे अभिनिष्ठ हो सकते हैं, ज्ञान पर आधारित है, इसलिए हम लोग दुख में पड़े हैं। तो जैसे स्वप्न में जो दुख हो रहा है आपको, स्वप्न में आपका किसी ने सिर काट लिया है और आप दुख में पड़े हुए हैं, तो उस दुख की निवृत्ति कैसे होगी, दुख होता है ना, ऐसे हम लोग मान लो कोई हाथ काट लिया आपका, काट कर उधर फेंक दिया, स्वप्न में आप देख रहे हैं कि हमारा हाथ एक कट गया है, तो आपको दुख होता है ना कि नहीं होता, चलो चाहे क्या कट एक हाथ कट गया तो उसे क्या अंतर, ऐसा नहीं होता है, दुख हो रहा है। तो वो दुख जब तक आप सोए रहेंगे, जब तक आप स्वप्न देख रहेंगे तब तक वो दुख होगा, उसको निवृत्ति उस दुख से चाहते हैं तो जग जाए, कोई जगा दे आपको, जग जाएंगे देखेंगे अरे हमारा हाथ ही कहीं है, सिर भी देखते हैं तो सिर तो कटा नहीं है तो ठीक ही है, कुछ खर्च नहीं आता आप। तो वैसे ही जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, जब आत्मा का स्वरूप पता लग जाएगा कि आत्मा क्या है इसका स्वरूप का, तो उसी दिन दुख दूर हो जाएगा। तो प्रभुपाद जी अभी संकेत कर दिए, तब कोई कहे तो हम तो भाई जागृत जागे हम थोड़ा स्वप्न देख रहे हैं, मैंने रात में भले स्वप्न देख रहे हैं जागृत अवस्था में, तो ये जागृत अवस्था में है, यह भी हम लोग का एक स्वप्न ही है, वह स्वप्न थोड़ा क्षणिक होता है या थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यह भी स्वप्न ही है, स्वप्नवत है, इस अज्ञान से निकलना है। और यह अज्ञान से निकलने जब हम कृष्ण भगवान को समझ जाएं, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, तो हमारा ज्ञान दुख हो, हमारे स्वप्न नष्ट हो जाएगा, और स्वप्न नष्ट हो जाएगा तो दुख तो हुआ ही नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हम बोल रहे तेईस श्लोक में एतद् द्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधन अज्ञान मूल अपि अपार्थ अपि, अज्ञान पर आधारित है और वास्तव रूप में हुआ भी नहीं है। से आप कहीं व्यापार करते हैं, आपका बहुत पैसा है रखा हुआ, तो किसी ने बता दिया कि सब चोरी चला गया, मान ली सच में चोरी चला गया है, किसी का मतलब चोरी चला गया और आपको पता लगा कि क्या है कि दुख बता रहे, तो हमको दुख लगता है कि हमारा इतना करोड़ रुपया रखा हुआ था, चल चोरी चला गया। लेकिन अब आप कल्पना कीजिए कि आप घर पर गए, पहले तो घर पर गए तो पता लगा है कि चोरी गया नहीं है, यह जो रूमर था यह वास्तविक नहीं, रूमर भी था और वास्तव में हुआ भी नहीं है, तो दोनों तो इस हालत में हम लोगों को न तो दुख में पड़े हैं, दुख में पड़े ही नहीं हैं, तो अज्ञान पर आधारित है। जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि शरीर है वह तो है ही नहीं और हम सचमुच पड़े नहीं है, इसीलिए अपार्थ अपि और ज्ञान मूल अपि, लेकिन स्वप्न इव अर्पते, स्वप्न में जैसे व्यक्ति दुखी होता है अथवा सुखी होता है वैसे ही हम इस दुनिया में सुखी दुखी हो रहे हैं। तो वह जब हम लोग कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, भगवान को समझ जाएंगे, आत्म तत्व को ठीक ठीक समझ जाएंगे, तो हम लोग इस दुखों से पार हो जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहे हैं एक वही सर्व धर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज अहम ताम सर्व पापे मोक्षे स्वयं, भगवान के शरणागति में हो जाते हैं। और न साधु मन्य, ऋषभ देव का उपदेश को कोट करते, न साधु मन्य यत आत्मनोयम असन्नपि क्लेशरे आशदेह, यह शरीर असत है हमेशा नहीं रहता है, लेकिन जब इस शरीर आत्मा इस शरीर में आ गया है तो आत्मा चूंकि इसमें इसका अभिनिवेश हो गया है, वह मान लिया है कि मैं शरीर हूँ, तो आत्मा वास्तविक रूप में नहीं लेकिन सुख दुख का अनुभव वास्तव में आत्मा ही कर रहा है, तो इसको मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। ऋषभ देव कहते हैं कि अच्छा नहीं, न साधु मन्ने यत आत्मनोयम असन्नपि, इस देहात्म धारणा क्षणिक काल के लिए देह है, लेकिन यह जब तक इस देह में आत्मा है तो आत्मा को यह सुख नहीं देते, क्लेश सदा असदय, क्लेश देने के लिए आत्मा को, सुख देने के लिए आत्मा को यह शरीर नहीं मिला है, दुख देने के लिए मिला है, क्लेशद है इसको कहे, दुख देता है। जब तक शरीर रहेगा हम लोग दुख में, और विशेषकर जब इसमें हमारी आत्मधारणा देहात्म धारणा बनी रहेगी तो हम लोग दुखी रहेंगे, तो हम लोग सुखी चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति आएगी भगवान के भक्त की सेवा करने से, उसको प्रसन्न करने। तो संक्षेप में यह उक्ति का सब ओर केंद्रित है, घूम फिर कर कर्म वासना उतय का श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंध में वर्णन है। ठीक है, यहाँ पर बताइए। नहीं, वो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रहलाद महाराज से ही पूछे हैं ना ये तो बात, तो देखिए टेक्स्ट में देखते हैं। प्रहलाद महाराज कहते नहीं कि वो तो हमारे लिए कह रहे थे उपदेश, ये तो कितना आसान था, प्रहलाद महाराज से जो प्रश्न प्रहलाद महाराज से ही कहा गया वो बात और सत्य है, जरूर है कि नारद जी का उपदेश हो रहा था प्रहलाद महाराज के ही लिए। यस आए सोलहवा न है, अच्छा पंद्रह में है, ऋषि कारुणिकस्य तस्यापि प्रादुर्भवेत्, धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च माम अपि उद्दिश्य निर्मलम। तो यह जो देखे एकदम टेक्स्ट को आप सुने कि मेरे लिए भी ऐसा ना, आप ठीक से देख लीजिए, मेरे लिए भी उपदेश कर रहे थे, मेरे लिए भी उपदेश कर रहे, उनको आपात दृष्टिकोण से, बाह्य दृष्टिकोण से मेरी माँ को उपदेश दे रहे थे। नारद जी तो माँ को, लेकिन मेरे लिए भी, मेरे लिए भी शब्द आया हुआ है। माँ को कहने की नाम माँ के लिए मेरे लिए कर रहे थे, नहीं तो कहते मेरे लिए कर रहे थे। सोच पाते देखे कि यहाँ कहते माम अपि उद्दिश्य, ऐसे अपि का विशेष रूप से प्रभुपाद जी माम मुझको विशेष रूप से उद्देश्य करके। नारद मुनि ने गर्भ में स्थिति टीका देख लेते हैं। देखिए पहला है, नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। चूंकि वे स्वभाव से पतित पर अत्यंत दयालु हैं, अतएव अपनी दिव्य स्थिति के कारण उन्होंने धर्म तथा ज्ञान के विषय में उपदेश दिए। ये उपदेश बहुत ही अच्छा, हिंदी से तो उतना क्लियर नहीं होता है। नारद मुनि ने गर्भ में स्थित मुझे तथा अपनी सेवा में लगी मेरी माता दोनों को उपदेश दिया। सेवा में लगी माँ थी, मेरी माँ को भी उपदेश दिया, तो माँ का क्वालिफिकेशन वो सेवा में डायरेक्ट लगी ही थी। नारद तो ये तो लगे भी नहीं थे, लेकिन संस्कृत का टेक्स्ट देखिए मुझे भी, तो यह गौण यह है इनके लिए। ऐसे अब डायरेक्ट और एक बार दूसरा स्पष्ट करता है श्लोक, तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात्, स्त्रीत्वात् मतलब स्त्री होने के कारण, स्त्री होने के कारण। अनुवाद देखिए, अधिक काल बीत जाने तथा स्त्री होने से, तो स्पष्ट है ना कि उपदेश में वो नारद जी ने ऐसा पक्षपात नहीं किए थे कि माँ को नहीं देना है, उसको भी दिए थे, जो कमी आई तो इधर से की हुई। आए? कुछ व्यवहारिक बातें, हम जैसे मैं तो आपसे स्पष्ट कहा कि संविधान एकदम आप कह देंगे, कहीं पब्लिक आप लेक्चर दिए जहां पर आप किसी को बड़ा था किसी को छोटा कर दिए, पुरुष को छोटा कर दिए तो भी चलेगा, स्त्री को छोटा पह दिए तो आप सचमुच संविधान के अनुसार आपको अरेस्ट किया जा सकता, जेल जा सकते। ये तो मतलब लगे यदि आप दिल्ली में कहीं आयोजन हो रहा उसमें बोल दिए तो एकदम जेल जाना है आपको, इसमें सचमुच रिस्क है। ठीक है, तो यह मतलब कि कुछ व्यवहारिक बातें होती हैं, उसमें वक्ता का भी लिमिटेशन होता है, श्रोता का भी लिमिटेशन होता है, लेकिन जो हम जो यहाँ जो कहा गया है वह उसी अपात उसी रूप में, तो इसी रूप में वर्णन है कि उन्होंने नारद उन्होंने कहा उपदेश में उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी उपदेश किए थे। यदि और नारद यह कहते कि नहीं मेरे लिए उपदेश किए थे इसलिए वह भूल गई, तो यह कहा जाता है हाँ मेरे लिए, मेरे को उद्देश्य करके इसमें स्पष्ट। वह तो प्रभुपा जी तो थोड़ा सा और भी बढ़ा कर सेवा में लगी हुई थी, और तो जो बेचारी सेवा में लगी हुई ही जिसको उसके लिए नहीं उपदेश दे रहे थे, नारद जी के लिए जाए वो तो दे ही रहे थे, मेरे लिए भी चूंकि मैं भी गर्भ में था ही, तो चलो तो गौण रूप में इनके लिए हो रहा था, उन्होंने धारण कर लिया और मुख्य। हाँ से तो मैंने सम्मेत रूप से मैंने निर्णायक तो बुद्धि को ही जिम्मेवार होता है ना, मन में संकल्प विकल्प आता है, जो निर्णायक शक्ति या कह के बुद्धि है। तो मन और बुद्धि एकदम विविक्त करके नहीं, कभी कभी समेत रूप से, कभी कभी चार कुमार हैं तो एक ही साथ, तो किसी का नाम भी ले लिया जाता है तो उसको अलग नहीं, तो ऐसे मतलब ये समेत रूप से, ये तो बहुत सूक्ष्म जो विवेचना होती है। तो सामान्य के कि मन और बुद्धि का हम लोगों को तो जानते हैं, शास्त्र में कहा गया है कि बुद्धि अलग है, हम लोगों को एकदम विविक्त नहीं करके देख समझ में नहीं आता है कि इतना ये मतलब एक तरह से क्या कहते हैं को, जब दूध को खूब बढ़िया से कर दिया जाता है तो पाश्चराइज एकदम बिल्कुल हो जाता है कि एकदम मिला हुआ है। तो बुद्धि और मन इतना एक साथ इतना आए कहे कि एक कोई किसी को कह दिए तो दोनों उसमें शामिल होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष है, तो यह मन को कह दिया तो उसमें इंक्लूडेड हो जाता है। एक बात को कह दें कि वो तो उसमें सब इंक्लूडेड हो जाता है। जैसे आप सुनते हैं कि कहा जाता है कि उसके आंख बहुत सुंदर है, तो समझ लिया कि आंख क्या को वर्णन कर गया तो पूरा सर्वांग सुंदर है। ऐसा नहीं कि आंख हम कहना चाहते आंख सुंदर है तो वो दूसरा उपलक्षण, उपलक्षण से उपलक्षण मैंने एक चीज कह दिया गया तो अब सबको आपको समझ लेना चाहिए। भगवान का कहा है भगवान की आंखें बहुत सुंदर थी, तो इसका मतलब कि नाक भी सुंदर है और कान भी सुंदर है, दांत भी, सब कुछ सुंदर। तो उपलक्षण से एक चीज का वर्णन कर, तो कहीं कहीं शास्त्र में मतलब मन एवं मनुष्य नाम, तो यह है कि और भी बुद्धि भी उसमें आ गए। ऐसा नहीं कि बुद्धि ने तो हमारा तो भगवान ने नाम नहीं लिया है, हमारा तो नाम नहीं तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उपलक्षण एक चीज का वर्णन किया गया तो आप और चीजें आपको समझ उसमें इंक्लूड कर लेना होगा। भगवान की आंखें बहुत सुंदर थी, तो अब ये मत समझे कि आंख सुंदर था और नाक चीन के लोगों से था, ऐसा नहीं था। नाक भी सुंदर है, दांत भी सुंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक वचन और पुडल का वचन के चतुष कुमारों के लिए भी कभी कभी एक ही का नाम हमेशा साथ रहते हैं, लेकिन कभी कभी एक ही का वर्ण के। नहीं हमको सुनाई, हम तक नहीं आवाज आएगी, पंड खड़ा हो जाए। इसमें तो यही ना कहा, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्व तह त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सर्वे। जान जाने का एक प्रभाव है, ज्ञान का एक प्रभाव है। आप तत्वतः कृष्ण के जन्म और कर्म के रहस्य को समझ जाएंगे तो भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति भगवान के धाम में जाए। ठीक ठीक से समझ लेगा तो तत्वतः हमने तत्वतः ठीक अच्छी तरह समझ ले। देखिए यह प्रश्न इनका इस तरह प्रकार है, महाराज जी दोपहर का सूरज उगा हुआ है फिर भी अंधकार है तो हम गिर जाएंगे कि नहीं? दोपहर में सूरज एकदम मध्य आकाश में और फिर भी हम
कि हमारे पास अंधकार है, तब मैं कैसे देख पाऊंगा। सर मैं जो कहना चाहता हूं समझ गए ना? आप एकदम निरपराध 64 माला का जप कर रहे हैं, कोई अपराध नहीं कि वैष्णव की सेवा में लगे गुरु के साथ, फिर भी भक्ति नहीं है, तब क्या करें? तो ठीक है, ऐसा ही हम होते हैं कि एकदम सूर्य 12 बजा हुआ है, आकाश में एक भी बादल नहीं है, कोई बादल आकाश में नहीं है और कोई धुआं भी नहीं, ऐसा नहीं फैक्ट्री के बीच में खड़े एकदम बड़ा स्वच्छ जगह पर है, फिर भी अंधकार घिरा हुआ, तब क्या करें? तो मैं जो कहना चाहता था, हम आपको तर्क में नहीं पराजित करना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि सर तो आप मुक्त हैं भागवतम भगवद्गीता के सिंडर्स पर, यदि सचमुच आप जानते हैं तो आप विश्वास कीजिए आप भगवान के भक्त हैं, आप मुक्त हैं। ठीक है, तो नौ से थोड़ा ज्यादा अतिक्रमण तो हो ही गया। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री श्री राधा गिरधारी जी की, श्रील प्रभुपाद की।